أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرامس میں ہم نے آپ کے سامنے مختصر، یعنی جس کی جان نکلنے والی ہے، جان کنی کے عالم میں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ غسل میت اور کفن وغیرہ کے سلسلے میں، اور نماز کے سلسلے میں بھی، نماز میت کے بارے میں بھی ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا طریقہ اور مسائل بیان کیے. غسل اور کفن کا ہم نے طریقہ اور اس کے احکام کیا ہیں، یہ سب آپ کے سامنے بیان کیا. کتنے کپڑے واجب ہیں، اور پہلے غسل ہے، اس کے بعد جو ہے حنوت ہوتا ہے، اس کے بعد کفن ہوتا ہے، یہ ساری ترتیب ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اب مختصر طور پر جو ہے اسی کو دہراتے ہوئے غسل کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. احکام کو ہم بیان کر چکے ہیں، صرف ایک مختصر سا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے تاکہ نوجوانوں کے اور جوانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. سب سے پہلے تو مردے کو جو ہے اس کے بدن کو جو ہے وہ پاک کرنا ضروری ہے. ممکن ہے کسی طریقے کی کوئی غلاظت یا کوئی نجس چیز جو ہے، یا کوئی نجاست مردے کے بدن پر لگی ہو، لہذا مردے کے بدن کو سب سے پہلے پاک کرنا چاہیے. پاک کرنے میں جو ہے وہ ایک شخص پاک کرے، دو شخص پاک کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پاک کرنے کے بعد جو ہے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے مردے کو جو ہے وہ کسی تختے پر لٹا لیا جائے، اور اس کے بعد جب مردے کو پاک کر لیا جائے اور اب غسل کی نوبت آئے، تو یہاں پر یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہر غسل میں جو ہے وہ مردے کی شرمگاہ پر جو ہے وہ تہمت ہونا چاہیے، ایک چیز. دوسری چیز کیوں؟ اس لیے کہ جو مردے کپڑے ہیں وہ تو پہلے ہی اتار لیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو کپڑے مردہ پہنے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ کاٹ کر یا پھاڑ کر اس طریقے سے اتار لیا جائے کہ مردے کو اذیت نہ ہو. دوسرے یہ کہ نیچے کی طرف سے اتارا جائے، بہتر یہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پاک ہونے کے بعد جب غسل دینا شروع کیا جائے، تو چونکہ کپڑے جو ہیں وہ مردے کے اتار لیے گئے ہیں، لہذا جو ہے وہ تہمت جو ہے وہ ضروری ہے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کو غسل دے گا اور نیت کرے گا کہ میں اس میت کو غسل دے رہا ہوں، غسل میت، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، چاہے ایک شخص سے مدد لے وہ، چاہے دو شخص سے، لیکن جو ہے وہ مدد لے سکتا ہے. مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت وہی شخص کرے گا جو غسل دے رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مدد بھی مختلف طریقوں سے لی جا سکتی ہے، یا تو وہ پانی کے اٹھانے کے لیے مدد لے سکتا ہے، یعنی ایک آدمی جو ہے اس کو پانی اٹھا کر دیتا رہے، یا جو ہے اس طریقے سے مدد لے سکتا ہے کہ وہ پانی خود اٹھاتا رہے، ایک آدمی جو ہے وہ مردے کو کروٹ دیتا رہے، گویا جو ہے بہرحال وہ مدد لی جا سکتی ہے وہ. اور طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ کوئی فرق نہیں ہے جو زندہ انسان غسل کرتا ہے اس میں اور مردے کے غسل میں، بے عینی ہی ویسے ہی ہے. سب سے پہلے جو ہے جو شخص غسل دے رہا ہے، جس نے غسل کی نیت کر لی ہے مردے کی طرف سے، وہ جو ہے پانی کو لے کر جو ہے سب سے پہلے مردے کے سر اور گردن کو دھوئے گا. اس کے بعد سر اور گردن کو دھونے کے بعد اب جو ہے چونکہ مردہ تخت پر لیٹا ہوا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ جب مردے کے داہنے حصے کو دھویا جائے، سر و گردن کے بعد جب داہنے حصے کو دھویا جائے گا، تو مردے کو جو ہے تھوڑا سا کروٹ کے بل کر لیا جائے، یعنی سیدھا نہ لیٹا رہے، اس کا بدن جو ہے یہ داہنا حصہ جب اس پر پانی ڈال رہے ہیں تو وہ تخت پر نہ لگا رہے. اب وہ چاہے کسی کی مدد سے کرے، یا اگر کر سکتا ہے تو خود کرے. اسی طریقے سے جو ہے جب بائیں حصے کو دھلے، تب بھی جو ہے بائیں حصے کو تھوڑا سا تختے سے اوپر اٹھا لے، تاکہ جو ہے وہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ مردے کے ہر جگہ پر جو ہے وہ پانی پہنچ گیا ہے. اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ داہنا حصہ دھلتے وقت تھوڑے سے بائیں حصے کو بھی دھل لے، اور بائیں حصے کو دھلتے وقت تھوڑے سے داہنے حصے کو بھی دھل لے، ताकि यकीन हासिल हो जाए कि पानी जो है वो हर जगह तक पहुंच गया है। यही बिल्कुल आसान और सादा सा तरीका है। अलबत्ता आमतौर पर जो है लोग मुर्दे को गुस्ल देने से घबराते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं एक मसला ये भी रोशन कर दूं कि जो इंसान मैयत को हाथ लगाता है, अगर जो है मैयत ठंडी हो चुकी है तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, लेकिन जिस इंसान ने मैयत को हाथ लगाया है, अगर वो किसी को हाथ लगा देता है या उसको कोई हाथ लगा देता है उस इंसान को, तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। यानी तीसरे शख्स पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, सिर्फ उस पर गुस्ल वाजिब होगा जिसने डायरेक्ट मैयत को छुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने जो है किसी मैयत को छुआ, चाहे वो गुस्ल देने की गर्ज़ से या किसी भी गर्ज़ से, मैंने किसी मैयत को छुआ और उसके बाद जो है वो किसी ने मुझे छू दिया, तो सिर्फ मुझ पर गुस्ल वाजिब होगा, जिसने मुझे छुआ है उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। या मैंने जो है किसी को छू दिया, तब भी जो है तीसरे शख्स पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, बल्कि सिर्फ मुझ पर गुस्ल वाजिब होगा। ये गुस्ल के सिलसिले में आमतौर पर जो है लोग सोचते हैं कि जो मैयत को छूने वाले को छू ले उस पर भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर तीनों गुस्ल देने के बाद कोई मैयत को छू लेता है तो फिर उस पर भी गुस्ल वाजिब नहीं होगा, बल्कि अगर कोई मैयत को ठंडा होने के बाद से गुस्ल दिए जाने के पहले पहले से छू लेता है, तब जो है वो गुस्ल मस मैयत वाजिब हो जाएगा। इसके बाद जो है वो कफन के बारे में थोड़ा सा हम तरीका बयान कर देते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। गुस्ल के बाद जो है वो जैसा कि हमने पहले ही बयान किया था, मैयत को जो है वो हनूत करना चाहिए, यानी एक ताज़ा और खुशबूदार काफूर, उसकी पेशानी, दोनों हथेलियों, दोनों अंगूठों, और दोनों अंगूठों यानी दोनों पैर के दोनों अंगूठों पर, और इसी तरीके से दोनों घुटनों पर लगाना वाजिब है, और मुस्तहब यह है कि नाक की नोक पर भी थोड़ा सा काफूर लगा दिया जाए। काफूर लगाने के बाद जो है अब जिस जगह पर मुर्दे को कफन दिया जाएगा, मैयत को कफन देने के लिए जो जगह आमादा की है, चाहे वो चारपाई हो, तख्त हो, या वो ताबूत हो जिसमें आमतौर पर जो है मुर्दे को लिटा कर ले जाते हैं, उसमें सबसे पहले चादर बिछाई जाए, चादर के बाद जो है वो पैरहन बिछाया जाए, और पैरहन का जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है सरहाने की तरफ समेट लिया जाए। उसके बाद जो है वो उस पर जो है वो लुंगी रखनी चाहिए। ये तीन चीज़ें वाजिब हो गई हैं। अगर जो है वो रानपेश रखना है तो रानपेश भी अभी रख दिया जाए, उसके बाद जो है वो मुर्दे को उस पर लिटाया जाए, रानपेश को बांधे, फिर लुंगी को बांधे, और उसके बाद जो है कुर्ते को मुर्दे के ऊपर डाल दिया जाए, इस तरीके से कि मुर्दे की गर्दन को कुर्ते की जो जगह काटी है या फाड़ी है उसको निकाल लिया जाए, उसमें से उस मुर्दे के सर को निकाला जाए और मुर्दे के ऊपर उसको डाल दिया जाए। उसके बाद जो है अगर कोई और मुस्तहब चीज़, मिसाल के तौर पर अमामा बांधना चाहते हैं, या अगर औरत है उसके लिए सीने बंद और रूसरी रखना चाहते हैं, तो सीने बंद जो है वो पहले ही रखना पड़ेगा मुर्दे को लिटाने से पहले, लेकिन रूसरी जो है वो बाद में रख सकते हैं, और अगर फिर उसके बाद एक जो मुस्तहब चादर और है उसको भी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, या इसी तरीके से यमन की जो चादर मुस्तहब है जिसको बुर्द यमानी कहा जाता है, अगर वो मिल जाए तो बेहतर है कि वो भी डाल दें, या शहादतन जो लिखी जाती है उसके बाद सीने पर शहादतन को रख दिया जाए, या इसी तरीके से जो है वो बाज़ मकामात पर जो है वो हाथ में खाक शिफा की तस्बीह और सजदगाह रखी जाती है, ये सारी चीज़ें, और दो बेरी की लकड़ियाँ जो रखी जाती हैं जिनको जरीदतन कहा जाता है, एक को कफन के अंदर से रखा जाता है, दूसरी को कफन के ऊपर से रखा जाता है। ये कफन का तरीका है जो बहुत ही सादा और आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको जो है वो अगर इंसान एक बार सही से पढ़े और करते हुए देखे तो आसानी से याद कर सकता है। इसके बाद जो है हमने नमाज के सिलसिले में भी मुख्तसर सा आपके सामने बयान किया था कि जब मैयत को जो है वो गुस्ल दे दिया जाए, हनूत हो जाए और कफन दे दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, तो उसके बाद जो है उस पर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। नमाज में 5 तकबीरें हैं। पहली तकबीर के बाद जो है वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद दूसरी तकबीर, और दूसरी तकबीर के बाद कहेगा अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फिर तीसरी तकबीर कहे, और उसके बाद कहे अल्लाहुम्म फिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, उसके बाद चौथी तकबीर कहे, अगर मर्द है तो चौथी तकबीर के बाद कहे अल्लाहुम्म फिर लिहाज़ल मैयत, और अगर औरत है तो चौथी तकबीर के बाद कहे अल्लाहुम्म फिर लिहाज़िहिल मैयत, और उसके बाद पाँचवीं तकबीर कहकर नमाज़ को तमाम करे। कल भी हमने, पिछले प्रोग्राम में भी हमने बयान किया था कि बेहतर ये है कि इससे बड़ी जो तकबीरें हैं और जिक्र वारिद हुए हैं हर तकबीर के बाद उनको पढ़ा जाए, जिनको आप तौज़ील मसाइल में देख सकते हैं। अलबत्ता इनका पढ़ना भी काफ़ी है, और खुसूसन उन लोगों के लिए कि जो उनको याद नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो इन्हीं को याद कर लें। अगर वो जमात से भी मैयत की नमाज़ पढ़ते हैं और इमाम बड़ी वाली तकबीरें पढ़ता है, यानी बड़ी जो दुआएं हैं तकबीर के बाद उनको पढ़ता है, लेकिन मामूमिन को वो बड़ी तकबीरें याद नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में मामूम अगर सिर्फ इन्हीं छोटी तकबीरों को भी पढ़ लेता है तो उसकी नमाज़ भी सही है और बाकायदा जमात के साथ उसकी नमाज़ हो गई है। लिहाजा जो है कम से कम इनको दो मोमिनीन को याद कर लेना चाहिए, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वक्त ज़रूरत जो है इनसे फ़ायदा उठा सकें। अब यहाँ पर जो है वो हम नमाज मैयत के कुछ शराइत आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहली शर्त तो ये है कि नमाज पढ़ने वाले का कस्द जो है वो कस्द क़ुर्बत यानी अल्लाह की नज़दीकी होना चाहिए। लोगों को दिखावा नहीं, यानी लोगों को दिखाने के लिए नमाज में शिरकत ना करे, या बड़े आदमी का इंतकाल हुआ है भाई इसलिए जो है वो नमाज में शिरकत कर रहे हैं, नहीं ये नहीं, बल्कि सिर्फ क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह ताला की खुलूस के लिए। और इसके बाद जो है वो मैयत मुअय्यन होनी चाहिए, यानी जब इंसान नमाज़ पढ़ रहा है तो मैयत को मुअय्यन करे कि किस पर नमाज़ पढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर एक से ज़्यादा मैयतें हैं और एक इंसान जो है एक मैयत की नमाज़ पढ़ रहा है, तो वो मुअय्यन करे कि किस मैयत की नमाज़ पढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर कहे कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ मैयत हाज़िर पर क़ुर्बतन इलल्लाह, इशारा कर दे, ज़्यादा मैयतें हैं लेकिन वो एक की तरफ इशारा करता है, मैं नमाज मैयत पढ़ता हूँ मैयत हाज़िर पर क़ुर्बतन इलल्लाह, या मैं हाज़िर मैयत पर नमाज़ पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, किसी तरीके से इशारे से अल्फाज से मुअय्यन कर दे ताकि जो है वो शक शुबा और इबहाम दूर हो जाए। इसके बाद जो है वो तीसरी शर्त ये है कि जो नमाज़ पढ़ रहा है मैयत की, जिस तरीके से वाजिब और मुस्तहब दूसरी नमाज़ों में क़िबले की तरफ होना ज़रूरी है, जिस तरीके से जो है वो दूसरी वाजिब नमाज़ों में क़िबले की तरफ होना ज़रूरी है, इसी तरीके से जो है वो नमाज मैयत में क़िबला रुख होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो चौथी शर्त यह है कि खड़े होकर नमाज़ पढ़े, बैठकर नमाज मैयत सही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा मिलता ही नहीं है जो खड़े होकर नमाज़ पढ़े, तो फिर बैठकर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, यानी कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बैठकर वहाँ पर नमाज़ पढ़े, सिर्फ एक आदमी है वो भी जो है बैठ कर पढ़ सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है बीमारी की वजह से या कहीं चोट लग गई है इस वजह से, तो फिर बैठ कर पढ़ी जा सकती है। इसके बाद जो है वो पांचवी शर्त ये है कि मैयत को जब नमाज गुजार नमाज पढ़ रहा है तो मैयत को जो है उसके सामने लिटा दिया जाए, इस तरीके से लिटाया जाए कि मैयत का सर जो है नमाज़ पढ़ने वाले के दाहिनी तरफ होना चाहिए और मैयत के पैर जो हैं वो नमाज़ पढ़ने वाले के बाईं तरफ होना चाहिए। इसी तरीके से छठी शर्त यह है कि नमाज पढ़ने वाले और मैयत के दरमियान जो है वो किसी भी तरीके का पर्दा या दीवार या कोई फासला जो है वो बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये मैयत रखी हुई है, उसके बाद जो है एक पर्दा पड़ा हुआ है, फिर नमाज़ पढ़ने वाला नमाज़ पढ़ रहा है, या ये मैयत है बीच में दीवार है उसके बाद नमाज़ पढ़ रहा है, ऐसा सब नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है दोनों एक दूसरे के नज़दीक हों। लेकिन अगर मैयत जो है वो ताबूत में लेटी हुई है, मिसाल के तौर पर जो है वो ताबूत या चारपाई जो आज मसहरी जो बनाई जाती है मैयत की, और उसमें जो है वो दीवारें भी उठी होती हैं, अगर इस तरीके की मसहरी में है तो उसकी दीवारों के फासले से कोई हर्ज नहीं होता है, जो खुद मसहरी की दीवारें हैं उसको फासला शुमार नहीं किया जाएगा, उनके होने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद जो है वो एक शर्त ये है कि नमाज गुजार यानी नमाज मैयत पढ़ने वाला मैयत से दूर ना हो, यानी मैयत के बिल्कुल नज़दीक खड़ा हो, लेकिन अगर जो है वो नमाज जमात के साथ हो रही है तो फिर जो है अगर लोग ज़्यादा हैं और मैयत से दूर भी होते चले जाते हैं, सफ़े लगी हुई हैं और लोग मैयत से दूर हो जाते हैं, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन जो है वो सफ़ों में इत्तेसाल होना चाहिए, यानी एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक सफ़ यहाँ लगी है दूसरी सफ़ जो है बहुत ज़्यादा फासले पर, या चार लोग यहाँ नमाज जमात पढ़ रहे हैं और चार लोग काफ़ी फासले से, ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होकर खड़े हों। इसके बाद जो है वो एक शर्त ये है कि नमाज पढ़ने वाले की जगह यानी जो नमाज मैयत पढ़ रहा है उसकी जगह जो है वो मैयत से न बुलंद होनी चाहिए ना यानी ना ऊंची हो और ना ही नीची हो, यानी जहाँ पर मैयत रखी है चाहे नीचे रखी हो या चारपाई में हो तो चारपाई के पाए गोया, वो जो है मैयत नमाज पढ़ने वाला ना उससे ऊंचा हो ना नीचा हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊंचा या नीचा है तो उसमें जो है कोई हरज नहीं है। आखिरी शर्त यह है कि नमाज मैयत जो है वो गुस्ल हुनूत और कफन के बाद होनी चाहिए, ये नहीं कि पहले नमाज पढ़ ली जाए उसके बाद गुस्ल हुनूत और कफन दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा शहीद है जो मैदान जंग में शहीद हो गया है तो उस पर जो है वो गुस्ल हुनूत और कफन उसके लिए नहीं है बल्कि उसको उसी के लिबास में दफन कर दिया जाता है। ऐसी सूरत में जो है वो बग़ैर गुस्ल हुनूत और कफन के उस पर नमाज़ पढ़ी जाएगी। दोस्तों हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है, अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे और नमाज मैयत के चंद अहकाम आपके सामने बयान करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।